भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अब सब चौटन नगरवासियों का स्वागत है। आज तीसरे दिन की भगवद गीता के सत्संग में रात सत्संग में भगवद गीता के नवे अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्यम योग। राज विद्या राज गुह्यम योग, योग का मतलब होता है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ना, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, उसको योग बोलते हैं। तो कौन से योग के द्वारा भगवान से मिलना है? राज विद्या राज गुह्यम योग। जो सब विद्याओं का राजा है और जो सब गुप्त चीजों में गोपनीयों में सबसे ज्यादा गोपनीय है, उस योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति के मार्ग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता में 18वां अध्याय है, 9वें अध्याय के ऊपर चर्चा चल रही है। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम वक्ष्यामि। वक्ष्यामि का मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहे हो भगवान? बोला ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, विज्ञान कहते हैं अनुभव को। विज्ञान का मतलब अनुभव के सहित मैं आपको सिखा रहा हूं। अनुभव के सहित बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान कोरा है, ज्ञान पराया बेटा है, किताब का बेटा है, विज्ञान अपना बेटा है। एक बार महाराज कहीं कुंभ मेले में थे तो बहुत से लोग आए, ये बात करने लगे, आप इतना बड़ा अपना मंदिर क्यों बना रहे हो, बहुत सारे मंदिर पहले पड़े, एक और मंदिर क्यों बना रहे हो? बाद में इतने सारे ये सब बच्चे गांव में घूम रहे, फिर तुम अपना बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो? सबके इतने सारे बच्चे हैं तो फिर अपने बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? भाई आपको हर एक को अपना बच्चा बीठा लगता है। तो जब तक विज्ञान नहीं होगा, विज्ञान का मतलब अनुभव जब तक नहीं होगा, कोरा किताब का ज्ञान जो है वो ज्ञान कहलाता है, वो विज्ञान नहीं कहलाता है। भगवान सातवें अध्याय में भी अक्षर ब्रह्म योग में भी यहाँ शुरुआत ऐसे करते हैं, मयासक्त मन पारथ योगम युञ्जम मदाश्रय। तुम मुझे, तेरा मन मुझ में आसक्त करके ज्ञान विज्ञान सहित मुझसे सीखो। तो ज्ञान और विज्ञान दो शब्द हैं। जैसे हम अभी सत्संग करके आपको सुना रहे हैं कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, ये ज्ञान है। ये ज्ञान है कि भगवान का ये आदेश है, भगवान का ये संदेश है और भगवान का ये आग्रह है कि हम भगवान के भक्त बने, ये तो ज्ञान है। अब जाके कहेंगे हमने गीता के ज्ञान में सुना है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। लेकिन विज्ञान ये है कि आप स्वयं भक्त बनने के लिए उसकी शुरुआत करें। जब आप अभ्यास करेंगे कि हम भक्त कैसे बने, तब आप भक्त बनेंगे। जब आप भक्त बनेंगे तब आपको अनुभूति होगी कि भगवान आपके कितने निकट हैं, भगवान का आपसे कैसे संबंध स्थापित किया हुआ है। आपने एक प्रक्रिया देखी, जो एक लड़की का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, माँ को पहले से दिन से ये विचार होता है कि इसको पालन पोषण तो मुझे करना है लेकिन एक दिन इसको विदा करना है। ये तो पहले दिन से विचार आता है, जिस दिन बच्ची का जन्म हो गया, आता है कि नहीं आता है कि बच्ची का जन्म हो गया तो एक दिन विदा करनी है। लेकिन फिर जब बच्ची जवान होती है तब उसके लिए रिश्ता ढूंढना पड़ता है। वैसे तो लड़कियां भी बहुत हैं, लड़के भी बहुत हैं संसार के अंदर, लेकिन एक ही लड़के के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाता है, तो इसको बोलते हैं संबंध स्थापित करना। तो ऐसे कितने प्राणी संसार में है और भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन जब भगवान से संबंध स्थापित करेंगे तब एक को पहचानेंगे कि अब हमारा जीवन इसके साथ जुड़ना है। ऐसे है कि नहीं, संसार की प्रक्रिया यही है कि दूसरी है, कोई है तो बहुत सारे, लेकिन जब जरूरत होती है तब एक ही व्यक्ति को चुनते हैं कि अब हम अपना जीवन इसको समर्पण करेंगे, उसको संबंध बोलते हैं। संबंध का मतलब हम क्या कहते हैं, अपना जिसके साथ संबंध करते हैं उसको क्या कहते हैं, संबंधी। ये संबंधी है ना भाषा, कि ये हमारे संबंधी है, इनसे हमने संबंध स्थापित किया है, अपनी बच्ची दी है कि लड़का दिया है कि लड़की ली है, संबंध। लेकिन संबंध स्थापित करने के बाद भी एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे की सेवा नहीं करते, वो अपने घर में रहता है, वो अपने घर में रहता है। लेकिन संबंध स्थापित किया, क्यों संबंध किया, कि एक दिन उस संबंध को संगठित किया जाएगा, उसको विवाह कहते हैं। तो विवाह जब हो जाएगा तो वो बच्ची कन्या जो है वर के घर में जाएगी, करेगी क्या, सेवा करेगी, वो सेवा करना शुरू करेगी। उसके बाद जब विवाह हो जाएगा तब सेवा करेगी और फिर प्रेम भी करेगी, और तब उसको अनुभव होगा कि जो संबंध हमने किया था उसका लाभ क्या है, उसका लाभ क्या है कि मेरे को सुख मिल रहा है, मेरे देखभाल हो रही है, मेरा भरण पोषण हो रहा है, मेरे खाने पीने का, मेरे वस्त्र का, इन सब की व्यवस्था की गई। तो अनुभव तब होगा, उससे पहले तो अनुभव नहीं होगा। और अनुभव होने के बाद भी उद्देश्य क्या था, काय के लिए संबंध स्थापित किया, क्यों सेवा कर रहे हैं, क्यों प्रेम कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है उसका, हमारे उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है। चाहते तो ये है कि हमारा वंश चले, हमारे को पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारे को पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, ये लक्ष्य होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो लक्ष्य क्या होता है, संबंध स्थापित करना, इसलिए कि आगे चल के हम सेवा करेंगे, सेवा करेंगे और प्रेम करेंगे। क्यों करेंगे सेवा और प्रेम, क्योंकि हमको संतान की उत्पत्ति होगी, हमारा वंश चलेगा, ये उद्देश्य ये होता है। तो ठीक इस प्रकार से हर एक जीव को, जब वो जैसे लड़की 20 साल माता पिता उसको अपने घर में पालन पोषण करते हैं लेकिन उनको मालूम है एक दिन विदा करनी है, तो ऐसे जब तक बचपन है कोई बात नहीं, लेकिन जब हम समझदार हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं, हमको जानकारी हो गई है, हमको ज्ञान हो गया, तब तो हमको संबंध भगवान से स्थापित करना चाहिए कि उसके अलावा और कोई तो हमारा सहारा है नहीं। तो ये संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। और पुराने जमाने में विवाह करने कौन जाया करता था, कोई बड़ा बुजुर्ग होता था, कोई पंडित जी महाराज को भेजते थे, भाई देखो फलाने का लड़का हमको पसंद है, जरा पता करके आओ कि वहाँ विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे प्रायः लड़की के माँ बाप नहीं जाते, लड़के के माँ बाप नहीं जाते हैं, किसी बीच के आदमी को भेजते हैं जो ये काम करता है। ऐसे साधु संत महात्मा का ये काम होता है कि जीव जब थोड़ा सा जानकार होता है और उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं अब अपने आप को किसी के हवाले करूं, किसी का शरण लूं, किसी की सेवा में लगूं, तब किसी साधु संत महात्मा के संग में जाके कहता हमको भगवान के साथ हमारा संबंध करा दो, हमारा रिश्ता जुड़वा दो। तो साधु संत महात्मा का काम क्या है? असल में उसका काम ऐसे है जैसे कोई सज्जन पुरुष होता है किसी कन्या के लिए जाके ढूंढ के कोई अच्छा वर ढूंढ के देता है कि भाई इसकी जन्म सफल हो जाएगा, ये अपना जीवन ठीक बीता है, इस तरीके इसका उद्देश्य है। तो साधु संत महात्मा का उद्देश्य ये होता है कि पहले जानकारी दे दें कि भाई एक दिन आपको इस संसार से जब जाना है तो कहाँ जाना है, तो किसके पास जाओगे, इसका पता तो होना चाहिए ना। अब यहाँ चौतरण से आप अगर बाड़मेर जाते हो तो आपको मालूम तो होगा ना कि हम किसके पास जा रहे हैं, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसे शहर के बाड़मेर में जाके कोई आदमी को पहचानते हो तब जाओगे ना। भाई दिल्ली जाना है तो कोई आदमी किसके पास जाएंगे, किसके पास रहेंगे, कहाँ खाएंगे, ये जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब इस दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं, तब भी जानकारी ले लेते हैं किसके पास जाना है, कहाँ खाना है। तो एक दिन इस संसार छोड़ के जाना है तो किसके पास जाना है, किसके पास जाना है, ये जानकारी पहले प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। ये संसार छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, एक बार छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, एक दिन। कोई जबरदस्ती इस दुनिया में सारी उम्र रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। आज तक कोई नहीं रहा है, न रहा है न रह सकता है। तो एक दिन जाना है, जिसको ये निश्चित हो जाता है कि एक दिन हमको यहां से जाना है, उसको बुद्धिमानी से पहला ये प्रश्न अपने आप से पूछना कहाँ जाना है। जो ये नहीं पूछता है मैं कहाँ जाना है, वो तो ऐसा व्यक्ति है। आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में आप जा रहे हो यहाँ से बम्बई, आपके सामने एक आदमी बैठा है, पूछे भाई कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। अरे भाई गाड़ी में बैठे हो, कहीं उतरोगे? कोई स्टेशन मालूम नहीं कहाँ उतरोगे। अरे मालूम नहीं तो मूर्ख है पहले नंबर का, तुम्हें मालूम नहीं कहाँ जा? नहीं, गाड़ी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग संसार में क्या कर रहे हो? अरे दुनिया है, चल रही है, बस चल। अरे कहाँ जाओगे? मालूम नहीं कहाँ जाओगे, कहाँ पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये तो ऐसी मूर्खता है कि नदी के अंदर नाव बहती आ रही है, अरे जल्दी जाएगी, अरे नहा बहाव बहती आ रही है, आगे पहाड़ से नीचे गिरेगी, उस वक्त तुम संभलोगे? नहीं नहीं अभी तो बस मैं रुक जाऊंगा, रुक नहीं, नीचे जाके गिरोगे, फिर तो बच नहीं सकते। तो बुद्धिमान वो है जिसको पहले मालूम होना चाहिए कि ये किस रास्ते जा रहा हूं मैं, कहां पहुंचूंगा मैं। तो ये जब तक जानकारी नहीं हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि हमको जाना कहां है, ये जानकारी के लिए जिज्ञासा पैदा होती है, उसको ही मानव कहते हैं। मानव कहना में कहलाने का अधिकार उसको है जो मानव जन्म में ये निश्चय कर ले कि ये तो यहां मैं जब तक रहूंगा तो मैं आनंद में सुख में रहूंगा, भगवान की सेवा में सबकी सेवा में लगा रहूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे को यहां से जाने का आदेश आ गया उसमें उस वक्त मैं भगवान के घर वापस लौट जाऊंगा। ये जिसने अपने मन में संकल्प कर लिया है कि रहूंगा यहां, सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा और भगवान के रिश्ते से सारे संसार की सेवा करूंगा, क्योंकि पूरे संसार के अंदर जो कुछ भी है वो तो सब भगवान का है। जब भगवान कहते हैं मैं सब प्राणियों का पिता हूं, मैं सब प्राणियों की माता हूं, तो हम सब आपस में तो भगवान एक ही की संतान है ना, तो एक ही भगवान की संतान है, तो एक दूसरे से प्रेम करना हमारा धर्म है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करता है, हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। और भगवान के रिश्ते में जितने भी हमारे संबंध साथी हैं, संगी हैं, जहाँ रहते हैं, उनके लिए सद्भावना हृदय में होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अति आवश्यक है। वो तब हो सकता है प्रेम सबसे, तब हम सबकी सेवा का भावना कर सकते हैं, जब हम ये समझ लें कि हमारा संबंध भगवान से है और ये सब भगवान के। जैसे कोई आदमी किसी का मित्र है, हम आपके मित्र हैं, तो हम आपके मित्र तो हैं, लेकिन आपके बच्चों के भी चाचा हो गए तो उनसे भी प्रेम करेंगे, और आपके कोई भाई होगा उससे भी हमारा सम्मान, उसके भी सम्मान करेंगे। तो इसका मतलब भगवान से प्रेम करने का मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से जिसका रिश्ता है, भगवान से जिसका संबंध है, उन सब के लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, उन सब के लिए हमारे मन में आदर होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज संसार में जो भगवान से संबंधित नहीं है? सभी तो भगवान से संबंधित है, फिर सभी के लिए सम्मान मान होना चाहिए। तो ये धारणा जब मन में आती है कि सभी के लिए प्रेम और भावना होनी चाहिए, ये तभी आ सकती है जब पहले हम पहचानेंगे कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ना चाहिए। अब जो भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं उनको बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कि इस मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में ये निर्धारित किया है कि एक दिन हमको अपना संबंध भगवान से स्थापित करना है। तो ये जान लेना, इसको ज्ञान कहते हैं। ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, उसको अज्ञानी बोलते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानी बोलते हैं। अज्ञानी का मतलब उसको जानकारी नहीं है। किस बात की जानकारी नहीं है? इस बात की जानकारी नहीं है कि हमको किसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। और वैसे आदमी किसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है? जो जो सुखी होगा उसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे ना भाई। रिश्ता जोड़ना है जो जो शक्तिशाली हो, जो बलवान हो, जो हमारी रक्षा कर सके, उसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे ना भाई। सुखी हो, बलवान हो, सुंदर हो, ये सब गुण ढूंढते हैं ना। बगैर गुण के तो किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते। तो इस संसार के अंदर सर्वगुण संपन्न कौन है जिसके साथ हम अपना रिश्ता जोड़ें? ये जिज्ञासा करनी चाहिए। कौन सर्वगुण संपन्न है? सब जो गुण जिसमें परिपूर्ण, ऐसा कौन है संसार के अंदर? एक भगवान शब्द जो है ना, भगवान, इस भगवान शब्द का अर्थ है भग मतलब छे, और वान मतलब जिसके अंदर संपूर्ण रूप से हो, जिसमें छह गुण परिपूर्ण रूप से हो, असीम रूप से हो, उसको भगवान कहा जाता है। भग मतलब छह। एक नाम होता कि हुआ करता था हमारे लोगों में, छगन। छगन एक नाम होता है ना, छगन मतलब जिसमें छह गुण हो, ये भगवान का नाम है। छगन का मतलब जिसमें छह गुण हो, जैसे भगवान में है। तो हमारे नाम प्राय सब होते हैं भगवान दास, छगन लाल। तो वो पीछे दास लगता है हमारे, के भगवान नहीं है, हम भगवान के सेवक है। तो भगवान सर्वगुण संपूर्ण है, सद्गुण संपूर्ण, छह गुण जिसमें है, सुंदरता है, शक्त बल है, सौंदर्य है, बल है, ईश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य, बलवान है, शक्तिमान है, सबसे ज्यादा सब कुछ चीजों का मालिक वो है। फिर सबसे ज्यादा त्यागी है, वैराग्यम च। इतने सारे संसार का मालिक है लेकिन संसार में कोई आसक्ति नहीं है, भगवान वैराग्यवान है। तो ऐसा भगवान, उसके साथ हमको संबंध जोड़ना है। हम तो जानते नहीं है भगवान है कौन, इसलिए भगवान हम नहीं जानते हैं। और हम जानते क्या है इस संसार में? हम इस संसार में जानते हैं अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने सेवक को, इन्हीं को जानते हैं ना। हमारा प्रायः इस संसार के अंदर मोह किसमें होता है? जो हमारा अपना है। और ये है क्या, रिश्ते कौन से हैं दुनिया के अंदर हमारे? या तो हमारा कोई सेवक होगा, या हमारा कोई मित्र होगा, या हमारा कोई माता पिता की तरह बड़ा बुजुर्ग होगा जो हमसे प्रेम करता है, हमारा ध्यान रखता है, या किसी से हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो प्रेम पुत्र से भी कर सकते हैं, पति से भी कर सकते हैं। तो ये चार रिश्ते संसार में जिनको हम, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, इसी के बंधन में बंधे हुए हैं। अब भगवान ने देखा कि ये सारे संसार वाले इन चीजों के बंधन में बंधे हुए हैं, अब इनको मैं अपनी तरफ कैसे मोड़ूं? तब भगवान इस संसार में कृपा करके अवतार लेके आते हैं और हमको कहते हैं आपको बहुत अच्छा मित्र चाहिए तो मैं आपका मित्र बन जाता हूँ, आइए मुझसे मित्रता कर लीजिए। हाँ, भगवान राम जाके सुग्रीव को कहते हैं तुम मेरे मित्र हो, आओ मुझसे मित्र तक, मैं तुमसे मित्रता करता हूँ, और फिर मित्रता करता हूँ तो तुम्हारे लिए मैं सारी तुम्हारी सारी व्यवस्था करने को मैं तैयार हूँ, तेरे को राज भी दिला दूंगा। तो सुग्रीव कहते हैं हाँ, आपने मेरी ये सेवा की है महाराज, मेरे को मित्र हो तो मैं आपके साथ लंका लड़ने को चलता हूँ अपनी सेना लेके। तो भगवान आके कहते हैं आओ आपको मित्र चाहिए तो मुझसे मित्रता कर लो। कोई कहे नहीं नहीं मुझे भगवान, मैं तो आपका सेवक हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरा सेवक बनना, मैं आपका मालिक बनता हूँ, आओ हनुमान की तरह सेवा में लग जाओ। तो भगवान आते हैं हमको मौका देने के लिए कि सेवक बनना है, सेवा करनी है तो आओ सेवा बन। इसलिए हमारी संस्कृति जो भारतीय है इसमें सबके पीछे नाम में दास लगा हुआ था, सबका नाम दास रखते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के सेवक हैं। ये बात समझ में आ जाए कि हम भगवान के सेवक हैं, इसलिए भगवान आता है कि हमको सेवा में लगाने का एक मौका देता है, एक अवसर देता है। कोई कहता नहीं सेवक है तो ठीक है, हनुमान की तरह भगवान का सेवक बन सकते हैं, ऐसे सेवक बने कि भगवान की सेवा में ही संलग्न रहे। और भगवान को क्या अच्छा लगता है यही उसके मन का भाव हो। और भगवान कैसे सेवक अच्छा कौन, जो अपने मालिक को संतुष्ट कर सके और उसको प्रसन्न रखे। एक दिन माता सीता जी सिंदूर लगा रही थी, हनुमान ने देखा ये क्या कर रही है माँ, बोला ये सिंदूर लगा रही हूँ। क्यों, बोला भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है। वो बाहर गया, जाके सिंदूर का मटका भर के अपने ऊपर डाल दिया, लाल होके खड़ा हो गया। अरे ये क्या किया हनुमान, इतना थोड़ा उसको अच्छा लगता है, मैं पूरे का पूरा लाल हो जाता हूँ। तो अभी हनुमान के ऊपर सिंदूर, तो भाई भगवान को अच्छा लगता है इसलिए लगा रहा हूँ, मैं कैसा लगूंगा इसका मुझे चर्चा नहीं, भगवान को अच्छा क्या लगता है। ये दास भाव है। दास भाव ये है कि भगवान को मैं संतुष्ट कैसे करूं, भगवान कैसे आनंद में, आनंद भगवान को कैसे प्रदान करूं। तो ये भाव दास का है। तो भगवान कहते तुम्हें हमसे तुम्हें सेवा करनी है, मेरी सेवा में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास नौकरी है नहीं, इस दुनिया के अंदर तो बेरोजगारी बहुत बड़ी परेशानी है भाई, बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। लेकिन भगवान के लिए जो भी सेवा में लगना चाहिए सबके लिए जगह है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो भगवान की सेवा के लिए जाए और भगवान मना कर दे। तो भगवान की सेवा में लगना है तो सबके लिए जगह खाली है, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मना कर दे भगवान सेवा में लगने से। असल में ये मंत्र हम जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के अंदर तीन शब्द हैं, हरे शब्द जो है भगवान की शक्ति को संबोधन है। भगवान की शक्ति, तीन प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं। एक भगवान की शक्ति को कहते हैं बाह्य अंग शक्ति मतलब बाहर की शक्ति का काम क्या है, इस संसार का जो ये भौतिक जगत है, ये जो दुनिया है इसको चलाना, ये काम है भगवान की बाहर अंग शक्ति का। और उस शक्ति का स्वरूप क्या है, कैसी है वो शक्ति जो इस संसार को चलाती है, दुर्गा उस शक्ति का रूप है। दुर्गा माता, जो दुर्गा हम कहते हैं, ये क्या है, दुर्ग किसको कहते हैं, ये ऊपर बना होता था ना पहाड़ के ऊपर किला था, इसको क्या बोलते हैं, दुर्ग। दुर्ग का मतलब एक किला, किला होता है ना, पुराने जमाने राजा महाराजा कोट बनाते थे, कोट या किला बनाया करते थे, उसके अंदर सब अपने आप को सुरक्षित समझते रहते थे। और एक और दुर्ग का अर्थ भी है, एक कोट का अर्थ दूसरा भी है, कोट में डाल देंगे, कोट का जेल अर्थ भी है, जो चारों ओर से बड़े दीवारों के अंदर किसी को डाल दिया जाए और एक आदमी ऊपर बैठा होता है कि बाहर नहीं जा सकता है। तो ये संसार जो है इसको शास्त्र कहते हैं कि जेल है, ये क्या है, कारागृह है। जेल में किसको डाला जाता है, जो कोई अपराध करता है, जैसे कोई अपराध हो गया उसको जेल में डाला जाता है। इस तरीके से कर्मों के कारण हमको इस संसार रूपी जेल में डाला गया है। अपनी इच्छा से कोई आया है क्या इस संसार में, कहीं आपसे पूछा जाया होता कि आपको भेज रहे हैं हम, तो आप थोड़ी कहते कि हमको चोटन में भेज दो, किसी छोटे से घर में भेज दो। जब पूछा जाता तो आप तो बहुत अच्छी कोई चीज मांग लेते, आपकी अपनी इच्छा से तो नहीं आया। भगवत गीता कहते अवश्य, अपने वश से नहीं, अवश्य, क्यों, किसके वश में, प्रकृति के वश में, प्रकृति वसात, प्रकृति के वश से। नवे अध्याय में ये श्लोक विशेष रूप से है कि सारे जीवों को प्रकृति पकड़ के इस संसार में लाके डाल देती है अपने अपने कर्मों के आधार के ऊपर। तो इस पूरे जगत के रूप में जो कारागृह है, एक कोट है, जो दुर्ग है, उसके अंदर सबको डाल दिया है अपने कर्मों को, उनको संभालने के लिए भगवान की एक शक्ति है, उसको कहते हैं अधिष्ठात्री देवी दुर्गा। काम क्या है, सबको इस दुनिया के अंदर अपने अपने कर्म के अनुसार ठीक तरह से चलाते रहना। और इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, देवी है ईश गुणमयी मम माया दुर्तया। ये कैसी देवी है, देवी ऐश गुणमयी, ये गुणमयी देवी है। गुणमयी के गुण शब्द सुना है आपने, तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण। एक भगवत गीता का पूरा अध्याय है गुण त्रय विभाग योग, तीन गुण प्रकृति के, सतो गुण रजो गुण तमो गुण, ये तीन गुणों का नाम सुना है, पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है, तीन गुण प्रकृति के। और हम जितने भी इंसान इस दुनिया में रहते हैं, मानव रहते हैं, वो तीन गुणों के अधीन है। एक गुण का अर्थ दूसरा है रस्सी, जिसमें किसी को बांध के रखा हो, और रस्सी पर ये अकेली एक एक रस्सी है, इतनी एक जो रस्सी होती तो उसको कोई तोड़ेगा तो टूट जाएगी, लेकिन अब दो रस्सी को साथ करेंगे और फिर तीसरी एक इसके साथ जोड़ेंगे तो मोटा रस्सा बन जाएगा, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो तीन रस्से, तीन गुण मतलब तीन रस्से इस प्रकृति के पास, पास किस चीज का बना हुआ, रस्सा किस चीज का है, तीन गुणों का रस्सा है और सबको बांध के रखा है। आपको ऐसे बांधा है आपको दिखता नहीं है, लेकिन हथकड़ी सबको डली हुई है, हथकड़ी सबको डली हुई है लेकिन दिखती नहीं है, फंसे हुए मोह में फंसे हुए ना, ये मेरा है इसमें फंसे हुए ना, घर छोड़ना नहीं चाहते। अरे हाँ आप समझ जाइए, मेरा घर है इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर बेच दो आपको, जब बेच के दूसरे को घर देते हैं, घर थोड़ी बाहर आके बोलते हैं मेरे को क्यों छोड़ के जा रहे हो, तुमने कितने प्रेम से मेरे को बनाया था, कभी पूछा है घर ने आपको, कभी किसी को पूछा है, अरे मेरा बहुत अच्छा ये झुमका है बहुत, मैं बड़े प्रेम से, लेकिन कोई चोर ले जाएगा, चोर को थोड़ी कहेगा इसने बहुत परिश्रम से कमाया तुम मत उठा के जाओ, और चोर थोड़ी रोएगा झुमका के मैं भैया मुझे मत ले जाओ, ये बहन जी ने बड़े प्रेम से मुझे रखा, नहीं वो हमको जानता ही नहीं है और हम उसको पकड़ के बैठे हुए, वो जानता है आपको, जिस चीज को आप समझ रहे हो मेरा है वो आपको कभी पहचानता है, नहीं पहचानता, और जड़ चीज तो आपको कहां से पहचानेगी, उन सबको हम पकड़ के बैठे, तो सब ही बंधन में तो पड़े हुए हैं, दिखता नहीं है रस्सा लेकिन सब बंधे हुए, मोह के अंदर बंधे हुए हैं, राग के अंदर बंधे हुए हैं और द्वेष के अंदर बंधे हुए हैं। राग तो मुझे अच्छा लगता है वो, लेकिन बुरा लगता है उससे भी बंधे हुए, इसको तो छोड़ना नहीं है, इसने मुझे बुरा कहा था, हमारे दिमाग के ऊपर सारा दिन वो घूमता रहता है, तो उससे बंधे हुए हैं कि नहीं हुए, तो बंधे हुए हैं इस संसार के अंदर। कौन बंधा है? गुणों ने, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, और चार वर्ण जो सृष्टि में भगवान ने बनाए हैं। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्ण की सृष्टि मैंने की है। बाबा भगवान कौन से आधार पे किए? गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार के ऊपर। गुण का मतलब क्या? सत्वगुण का व्यक्ति ब्राह्मण होता है, रजोगुण का व्यक्ति क्षत्रिय होता है, रजो और तमोगुण दोनों का प्रभाव होता है वैश्य होता है, और जो तमोगुण में होता है उसको क्षुद्र कहते हैं। तो ये गुणों के आधार पे चार वर्ण है, और कर्म, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के विभाग से चार वर्ण बनाए हैं। और कर्म क्या है? ये भगवद गीता के 18वें अध्याय में ब्राह्मण का कर्म क्या है? सम दम शौचम, अपने सम दम अपने इंद्रियों को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना, शौचम पवित्रता रखना, ज्ञान विज्ञान जानकारी रखना, अनुभव रखना, वैराग्यम, ये ब्राह्मण के कर्म है, क्षत्रिय का कर्म है अपना शौर्यम बलवान होना चाहिए। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या है? ये छाता उठाते हो ना, छाता काय के लिए उठाते हो? कि गर्मी से और बरसात से बच जाए, जो क्षति पहुंचाने से बचाए उसको क्षत्रिय बोलते हैं, जो क्षति कष्ट या तकलीफ पहुंचाने से बचाए, जो सर के ऊपर धारण करने से, इसलिए क्षत्रिय को सर के ऊपर धारण करते थे, सर ब्राह्मण है उसके ऊपर भी छाते को धारण करते, तो राजा क्षत्रिय को बनाते थे, दिमाग माथा तो ब्राह्मण है लेकिन उसके ऊपर उसको बिठाते थे, इसलिए बिठाते थे कि वो रक्षा करना उसका धर्म था। तेजो शौर्यम, वो तेजस्वी है, वीर है, ईश्वर भावश्च, और ईश्वर भाव है मतलब सबको अपने इसको कहते हैं, एक शब्द है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अनुशासन में रखना, ईश्वर भावश्च, ईश्वर का मतलब मालिक, जो कहे कि भाई कौन इसका इस स्टेट का मालिक कौन है, ये महाराज जी इस स्टेट के मालिक है, तो उसका मालिक का मतलब उसको ठीक तरह से नियंत्रण में रखना, लेकिन सबकी रक्षा करना, तो ये और फिर वैश्य का धर्म बताया है, कृषि वाणिज्यम गौरक्षा वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि वाणिज्यम गौरक्षा, कृषि मतलब खेती करना, जमींदारी, असल में कृषि का यह अर्थ है जमींदारी, जिसके पास जमीन है और अपनी खेती करवाता है, गौरक्षा जो माल रखता है, विशेष रूप से गाय, पुराने जमाने में गाय था घोड़ा था, ये बहुत बड़ा धन, सेना को घोड़े की आवश्यकता होती थी हमेशा, जो 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 क्षत्रिय होता था अपने पास घोड़े हाथी ये रखता था युद्ध के लिए, और गाय रखता था अपने दूध के लिए और बच्चों के पालन पोषण के लिए राज्य के लिए, तो गौरक्षा वाणिज्यम, ये वैश्य का वैश्य की बात कर रहे हैं, वाणिज्यम व्यापार करना, व्यापार करना बिजनेस करना, ये वैश्य कर्म स्वभाव, परिचर्यात्मकम, और तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रकम स्वभावजम। तीनों वर्णों के ब्राह्मण को भी सेवक चाहिए, लकड़ी लाएगा तब यज्ञ करेगा, उसके पास भी लकड़ी लाने के लिए चाहिए, सामान ले जाने के लिए चाहिए तो उसके पास सेवक चाहिए, क्षत्रिय को भी सेवक चाहिए, अस्त्र शस्त्र उठा के चलना है, भोजन बनाना है, लाना है, करना है, ये चाहिए सेवक, वैश्य को भी काम करने के लिए सेवक चाहिए, तो तीनों को सेवक चाहिए। तो जो सेवा तीनों की करता है उसको कहते हैं क्षुद्र। तो हर एक का कर्म क्या है उसकी पहचान और गुण से पहचान होती है। तो दैवी ऐश गुणमयी, ये जो भगवान की बाहर अंग शक्ति है ये कैसी है, ये दैवी है। देवी एक मतलब भगवान की है लेकिन है गुणमयी, तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी है, तीन गुण उसके अधीन है, प्रकृति है, ये प्रकृति का स्वरूप है। कोई दैवी ऐश गुणमयी मम माया, ये माया मेरी है भगवान कहते हैं। मम मतलब श्री कृष्ण कहते हैं मेरी, मम माया, माया का मतलब माया, जो नहीं, जो दिखता है लेकिन है नहीं, माया मतलब जो दिख रहा है लेकिन है नहीं, यस, जो है दिख रहा है सामने पड़ा है लेकिन है नहीं, उसको बोलते हैं माया। जैसे माया का एक अर्थ होता है छल, जैसे जादूगर होते हैं ना भाई, माया मायावी राक्षस है, मायावी राक्षस है मतलब वो थोड़ी देर के लिए, हाँ, रावण जो है वो ब्राह्मण बन के आ गया सीता के सामने, यो माया। अब वो माया और रावण बहुत साधु बन के आया, साधु तो नहीं था, साधु नहीं था रावण, लेकिन साधु का वेश धारण कर लिया, इसको बोलते हैं माया। मम माया, कैसी है आपकी माया, बहुत दुर्तया। दुर्तया का मतलब ऐसी कठोर है कि किसी को छोड़ती नहीं है, सबको बांध के रखा हुआ है दुर्ग के अंदर, वो ऐसा जेल सुपरिटेंडेंट है, ऐसा जेल का सुपरिटेंडेंट है, किसी को भी हिलने नहीं देता है, पकड़ के सबको बांध के रखा है। तुम वैसे बाहर कैसे निकलेंगे जेल से, इस संसार रूपी दुर्ग में फंस गए हैं, इस संसार में आके फंस हैं तो निकलेंगे कैसे, ये तो ऊपर खड़ी है, हमारे ऊपर छोड़ेगी नहीं। तब कहते ये माम प्रपद्यन्ते, ये माम, ये मतलब जो भी माम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा, प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते कल बोला परपना, जो मेरा चरण पकड़ लेता है, मेरे शरण में आ जाता है, मेरा बन जाता है। ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, इस माया से तर जाता है, फिर इसका माया नाम नहीं लेती। तो ये माया फिर नाम नहीं लेती है, कब नाम नहीं लेगी माया, तो कब हम इस जेल से छूटेंगे, जब भगवान का शरण लेंगे। भगवान का शरण लेने का मतलब भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे और भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के बारे में जानकारी लेंगे तो ज्ञान होगा, और भगवान की सेवा में लगेंगे तब विज्ञान होगा। तो हरे कृष्ण मंत्र हम जपते हैं उसके अंदर हरे शब्द जो है भगवान की शक्ति को संबोधन है, भगवान की एक शक्ति बाहर अंग शक्ति है, उसका स्वरूप दुर्गा है जो इस संसार का संचालन करती है। दूसरी भगवान की शक्ति अंतरंग शक्ति है, अंतरंग शक्ति का मतलब घर के अंदर रहने वाली शक्ति, अंतरंग, अंतर मतलब अंदर, तो अंतरंग शक्ति भगवान की कहाँ है, वो आध्यात्मिक जगत में है। देखो ये जो संसार हमको दिख रहा है, ये एक एक देश दिख रहा है हिंदुस्तान, ऐसे कई देश हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ये सारी पूरे देशों को बोलते हैं कि ये सारा वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, ये तो एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। और वेद लिखता है भगवान सांस लेते हैं तो सांस के साथ और एक एक रोम से एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है। जैसे आप बाहर जाएंगे गर्मी में पसीने की बूंद आती है ना, कितनी पसीने, कभी पसीने की बूंदें कितनी शरीर पे लगती है, कभी गिनी है आपने, गिन नहीं सकते हो, जितने पसीना निकलता है ऐसे एक एक ब्रह्मांड, इस ये दुनिया पूरी है ना जितना ये विश्व है, ऐसा एक एक दुनिया भगवान के एक एक रोमकूप से बाहर निकलती है। ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी बैठा है, हर ब्रह्मांड में एक भगवान शंकर बैठा हुआ है, ये तीन गुणों के अवतार है, उत्पत्ति करने का अवतार ब्रह्मा जी है, रजोगुण का अवतार है, प्रलय करने के लिए भगवान रुद्र भगवान शंकर है, वो तमोगुण प्रधान अवतार है, और सबका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए विष्णु है। तो ये तीन गुण अवतार कहलाते हैं, और हर ब्रह्मांड में एक शिव है, एक ब्रह्मा है और एक विष्णु है। एक बार भगवान द्वारका में रहते थे, ये इस ब्रह्मांड को चलाने वाला ब्रह्मा जी वहां आया, दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया, बोला भगवान श्री कृष्ण ने मिलना है। तो दरबार ने बोला कौन हो बताओ तो सही। बोलो ब्रह्मा जी हूं। तो अंदर जाके भगवान श्री कृष्ण से बोला कि कोई बाहर आया है आपसे मिलने, कह रहा है ब्रह्मा जी। उससे बोलो कौन सा ब्रह्मा है, पूछ क्या जाके पूछा कौन सा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी तो एक चार सर है, इधर से खोपड़ी को खड़काया, कौन सा ब्रह्मा, ये क्या बात है। और बोलो वो ब्रह्मा, लेकिन वो देख रहा था उसको तो ये कौन सा ब्रह्मा। तब कहा वो संतादि कुमारों का पिता, तो भक्तों के नाम से अपने आप को पहचान कराई, नारद का पिता ब्रह्मा। अंदर जाके भगवान को कहा हाँ ले आइए। लेकिन जब ब्रह्मा को लाए तो भगवान उस ब्रह्मा को दिखाना चाह रहे थे, इस ब्रह्मा को मालूम हो कि इस सृष्टि में और भी बहुत ब्रह्मा है। तो भगवान ने आह्वान किया तो आठ सर वाला ब्रह्मा आया, 16 वाला आया, 18 वाला, 20 वाला, 25 वाला, 100 वाला, 500 वाला, चारों ओर ब्रह्मा ब्रह्मा सरों वाले। ये ब्रह्मा देख रहा है कि मेरे चार सर है लेकिन ये तो 100-100 सरों वाले चारों ओर बैठे हैं, कौन सा ब्रह्मा कहाँ से आया। सबको देख के बोला ब्रह्मा जी इतना छोटा समझ लगा, अरे मैं समझ रहा मैं ही बड़ा हूं, इस पूरे संसार का सृजन कर रहा हूं, ऐसे कई ब्रह्मांड है जिसमें कई ब्रह्मा ये कार्य कर रहे। ये बड़ा अपने आप को समझना बड़ी मूर्खता होती है। एक कोई सेठ किसी नगर में, किसी बड़े नगर में एक संत गया, सेठ जी ने कहा आप हमारे घर पधारिए, चला गया संत उधर। तो सेठ जी हम जाते हैं ना प्राय, जब जाएंगे तो एक ही बात करते हैं, हमें तो अनुभव इस बात का है, महाराज आपकी सारी कृपा है, ये देखो लाइन दुकान की देख रहे हैं ना, ये सब तो अपनी है आपकी कृपा से, वो फैक्ट्री दो देख रहे हैं वो फैक्ट्री अपनी चल रही, ये जमीन जो सामने दिख रही है जितनी आपकी नजर ये अपनी है। महाराज ने कहा इसको जरा अहंकार बहुत ही हो गया संसार में, तो दुनिया का गोला पड़ा था, जो वर्ल्ड मैप पड़ा था, विश्व का एक मानचित्र पड़ा था। महाराज ने बोला देखो तो जरा अपना देश इसमें कहाँ है, तो पूरे गोले को घुमा के देखता है तो माकोड़ी जितनी जगह के ऊपर उसका देश का नक्शा था। बोला इसमें आपका शहर कहीं है, महाराज इसमें तो हमारे शहर का नाम नहीं है। बोले फिर तुम्हारे वाले दुकान कहाँ है, तुम्हारे दुकान इस दुनिया के मानचित्र में कहाँ है, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा ये सब कुछ बड़ा है, अरे संसार बहुत बड़ा है। तो ब्रह्मा समझना मैं अकेला ही ब्रह्मा हूं, अरे ऐसे कई और ब्रह्मा है, तो ऐसे कितने ही ब्रह्मांड हैं, कई ब्रह्मांड हैं ऐसे, ऐसे सारे ब्रह्मांड मिला दिया जाए तो 1/3 एक चौथाई हिस्सा भौतिक जगत है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ऊपर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा थल है, बाकी सब जल है, बाकी सब पानी के समुद्र है, लेकिन 1/4 हिस्सा भूमि है। ऐसे 1/4 हिस्सा ये ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड मिलते 1/3 हिस्सा तो आध्यात्मिक जगत है, 3 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है जहां भगवान के सेवक रहते हैं। असंख्य वैकुंठ है भगवान विष्णु के लोग, भगवान राम का साकेत अयोध्या है जहां भगवान राम के भक्त रहते हैं, ऐसे असंख्य लोक हैं। तो उनकी संचालन करने के लिए भगवान की अंतरंग शक्ति है, भौतिक जगत के संचालन कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भौतिक जगत का संचालन करने के लिए भगवान की बाहरंग शक्ति है, वो क्या है, छाया अनुरूपा दुर्गा, छाया अनुरूपा, जैसे आदमी है उसकी छाया है, ऐसे भगवान की अंतरंग शक्ति की छाया ये दुर्गा के रूप में संसार का संचालन करती है। लेकिन जो 3 हिस्सा ऊपर है वो भगवान का निज धाम है, जो उसका आध्यात्मिक जगत है, उसका संचालन करती है भगवान की अंतरंग शक्ति। और भगवान की अंतरंग शक्ति उसका स्वरूप क्या है, राधा लक्ष्मी, वैकुंठ में उसका स्वरूप लक्ष्मी है और गौलोक वृंदावन में उसका स्वरूप राधा है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो हरे शब्द जो इस मंत्र, तीसरी शक्ति भगवान की जो है वो हम जीव आत्मा है, जो जीव आत्मा है ये भी भगवान की शक्ति है। इसका वर्णन 7वें अध्याय भगवद गीता में, जीव भूता, जितने जीव हैं ये मेरी शक्ति है। पहली शक्ति भगवान बताते हैं बाहर की, आपो अनलो वायु खम बुद्ध मनो बुद्धि एवच, ये 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश वायु और 3 चीजें और, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकृति के ये बाहरंग शक्ति है जिससे ये शरीर बनाए। इससे ऊपर जीव भातम भूतम, जो जीव है इससे ऊपर है, वो मेरी ऊपर की शक्ति है और प्रकृति मेरी नीचे की शक्ति है। तो जीव कौन सी शक्ति है, हम क्या है, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ का मतलब किनारे के ऊपर खड़ा हुआ, तट के ऊपर खड़ा है, जो किनारे पे खड़ा है, चाहे तो ऊपर चढ़ के आए चाहे तो नीचे जाए। अब हमारे को ये स्वतंत्रता है, केवल इंसान को, मानव को स्वतंत्रता है, पशु को नहीं। पशु कर्म यूं नहीं है, जो किया है वो भोगेगा, अच्छा किया है तो अच्छा भोगेगा, अच्छा किया है तो कुत्ता किसी सेठ की गाड़ी में घूमेगा और बुरा किया है तो रोटी के लिए रोज डंडा खाएगा, है तो कुत्ता, वही कुत्ता है। लेकिन एक कुत्ता एसी में कार में घूमता है, एसी घर में रहता है, और हमारे बच्चे को दवाई के लिए 10 रुपये नहीं है, उसकी दवाई के लिए 10,000 रुपया खर्च होता है, बड़े डॉक्टर के पास जाता है, तो कुत्ता ही। अच्छा कर्म किया है तो अच्छे घर में रह रहा है, खा रहा है जो चाहे वो, और नहीं किया है तो गली में घूमने वाला कुत्ता हो जाएगा और धक्के खाता रहेगा, तो जब खत्म हो जाएगा तब दूसरी जूनी में जाएगा, कुछ कर्म नहीं कर सकता है। और कोई भी जूनी में कर्म करने का अधिकार नहीं, केवल मानव जन्म में कर्म करने का अधिकार है। एक स्वतंत्रता मानव को है, क्या स्वतंत्रता है, आप चाहो तो बाहरंग शक्ति की गोद में खेलो, इस संसार में घूमते रहो, चाहे तो अंतरंग शक्ति का शरण ले लो और भगवान के धाम में चले जाओ। ये निर्णय आपको करना है, ये स्वतंत्रता, इतनी भगवान ने आपको आजादी दी है। आपकी आजादी ये है कि आप चुन लो कि आपको माँ की गोद में बैठना है कि नौकरानी की गोद में बैठना है। भगवान की अंतरंग शक्ति माता है, भगवान की बाहरंग शक्ति उस माता की छाया है, वो छायानुरूपा दुर्गा। तो ये निर्णय हमको करना है किसकी शरण में रहना है, किसके गोद में खेलना है। तो हम क्या है, बीच वाली शक्ति तट के ऊपर है, हमको स्वतंत्रता है, चाहे तो हम बाहरंग शक्ति के आदेश में रहें, उसके संरक्षण में रहें, तो इस संसार में भटकते रहेंगे, फिर कहाँ, स्वर्गलोक में जा सकते हैं, स्वर्गलोक में जा सकते हैं, वहां स्वर्गलोक में रह के आ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे संसार में। आ भोवना ब्रह्मलोक पुनरावर्तिनो अर्जुनो, 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है। ब्रह्मा के लोक से लेकर, ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चुंटी तक सबको जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। ब्रह्मलोक में जाएंगे इसलिए बताया है, बताया पहले ब्रह्मा की उम्र बताइए, आपकी घड़ी है ना, आपकी घड़ी में कितने घंटे हैं, कितने घंटे हैं, 12 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट। ब्रह्मा जी की घड़ी में 14 घंटे हैं और 72 मिनट हैं। 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 12 घंटे होते हैं ना घड़ी में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु पैदा होते हैं, और एक मनु के काल में 72 चतुर्युगियां घूमती हैं, 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, इससे डबल है द्वापर युग 8,64,000, उससे डबल है त्रेतायुग और उससे डबल है सतयुग, ये सब मिलाएंगे एक चतुर्युगी होगी। एक चतुर्युगी एक ब्रह्मा जी का मिनट है, ब्रह्मा तो सेकंड का हिसाब कहां से करें, हम हमारे मिनट में 60 सेकंड है, ब्रह्मा जी के मिनट में कहां से हिसाब करेंगे। एक 4 युग पूरे खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा का एक मिनट हुआ ब्रह्मा की घड़ी का, ऐसे 72 युग खत्म होंगे तब ब्रह्मा जी का एक घंटा हुआ, ऐसे 12 घंटों का एक ब्रह्मा जी का दिन है और ऐसे 12 घंटे की एक रात है, और ऐसे दिन रात से 100 साल तक ब्रह्मा जीता है। अब ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए हैं, 50 साल ब्रह्मा जी के पूरे हो गए हैं। इतनी बड़ी उम्र जिसको मिलती है और सारे ब्रह्मांड का बड़े से बड़ा देव है, उसको भी जब 100 साल पूरे होंगे तो वो पद छोड़ना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा से लेके छोटी पतंग, पतंग किसको कहते हैं, ये बरसात हुई ना, कल देखा बरसात में रात को लाइट जलाई तो कितने पतंग कटे हुए, रात को पैदा हुए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, सुबह तक सब मर गए, एक भी नहीं बचा। देखा है कितने मकबड़े रात को पतंग होते हैं, छोटे छोटे परों वाले पैदा कितने होते हैं, होते हैं और सुबह तक सब समाप्त, उनकी पूरी जीवनी पूरी हो गई, कोई देर नहीं लगती है उसमें। तो उससे छोटी सी छोटी आयु वाले जीव से लेकर बड़ी से बड़ी आयु वाले जीव तक संसार में आवागमन रहता है। तब भगवान ये बता रहे हैं, इसलिए ज्यादा जीने की भी चाह ना करो, आपको ब्रह्मलोक तक भी जाओ, स्वर्गलोक में जाओ भी, तेतंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम क्षणपुणे मृत्यु लोकम विचन्ति, बहुत बड़ा स्वर्ग का भोग कर लोगे लेकिन पुण्य खत्म हो गया, जो कमाया था वो पूरा हो गया, तो फिर वापस मृत्यु लोकम विचन्ति संसार में आना पड़ेगा। इस ये बताने का उपाय उद्देश्य क्या है, ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि भाई इस झंझट में मत पड़ो, बड़ी उम्र के बड़े पद को छोड़ो, भगवान के शरण में आ जाओ। ये हमको निर्णय लेने के लिए आठवें अध्याय में विशेष रूप से ब्रह्मा के समय का बताया है कि ब्रह्मा का समय कितना है, कितना बड़ा लंबा है ब्रह्मा जी का समय। तो बात क्या कर रहे थे, बाहरंग शक्ति भगवान की संसार का संचालन करती है, अंतरंग शक्ति भगवान के निज सेवा में रहती है, आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है, और हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो तटस्थ शक्ति को ये स्वतंत्रता है, ये आजादी है कि हम भगवान की अंतरंग शक्ति का शरण लें या बाहरंग शक्ति का शरण लें। तो हरे जो शब्द है, ये हरे शब्द भगवान की अंतरंग शक्ति को संबोधन है। संबोधन किसको कहते हैं? संबोधन करना मतलब सामने उसको, उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के बोलना, प्रार्थना करना। संबोधन का मतलब प्रार्थना करना, अरदास करना, विनती करना। किसको? अंतरंग शक्ति को। हरे क्यों कहते हैं? हरि भगवान का नाम है, हरि, हरि भगवान का नाम है, हरि हरि राजनाम जी, तो भगवान का नाम है हरि। हरि का मतलब जो हर ले, क्या हर ले? दुख हर ले अपने भक्तों का, दुख ताप संताप जो अपने भक्तों का हर ले उसको हरि बोलते हैं। और जो हरि को भी हर ले, हरि को ही जो हर ले जाए उसको हरे बोलते हैं। हरे का मतलब जो भगवान को भी अपना बना ले, भगवान जिसको अपने आप जिसके हवाले कर दें उसको हरे बोलते हैं। तो भगवान की अंतरंग शक्ति हरे, भगवान की अंतरंग शक्ति को संबोधन है। कृष्ण भगवान का निज नाम है, कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षण करता है, जो आकर्षण करता है। आकर्षण किसको कहते हैं? जो सबको अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर जो सबको खींचता है। कौन खींचता है अपनी ओर? जो प्रेम करता है, प्रेम से सबको अपनी ओर खींच रहा है। कृष्ण का मतलब आकर्षण, कर्षति इति कृष्ण, कर्षति, कर्षति मतलब खींचना। तो कृष्ण का मतलब है अपनी ओर खींचने वाला। एक उदाहरण देते हैं इस बात को समझाने के लिए कृष्ण कैसा है। एक बहुत बड़ा मैग्नेट, चुंबक, देखा है चुंबक आप लोगों ने? देखा है चुंबक? हाँ, अब पुराने जमाने के लोगों को चुंबक का उदाहरण बहुत आसान है। एक रुपया होता था गोल गोल, और दुकानदार सब अपने एक ऐसे यू शेप एक चुंबक रखा करते, रुपया ले जाते उसको लगाते थे, लग गया तो बोलेगा ये ठीक है, नहीं लगा चपका तो ये बोलेगा रुपया खोटा है। पुराने जमाने में मकनातीस बोलते थे उसको, चुंबक मकनातीस मैग्नेट। और आजकल देखना है तो जो रेडियो या जो आपके घर में टेप रिकॉर्डर है ना, उसमें लाउड है, उसके पीछे चुंबक होता है, बच्चे कभी उसके ऊपर लोहे के टुकड़े चिपकाते रहते, देखा है? तो चुंबक किस चीज़ का बना हुआ है? लोहे का बना हुआ होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, और लोहे के जितने टुकड़े उसके सामने रखोगे सबको आपस में अपनी ओर खींच लेता है। खींचता है कि नहीं खींचता है? बड़ा चुंबक हो, चुंबक होगा तो सबको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इतने बड़े चुंबक होते हैं, इतने बड़े चुंबक होते हैं कि जहाज को भी रोक सकते हैं, ताकतवर चुंबक इतने बड़े होते हैं। एक मंदिर है, 10 के नोट के ऊपर एक चित्र, हमारे 10 के नोट के ऊपर एक चित्र देखा है, पहिए का चित्र होता है, पहिया है गोल, 10 के नोट के ऊपर कभी देना, पहिए का चित्र है ये, पहिया है। कोणार्क मंदिर है एक उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर दोनों के बीच में कोणार्क नाम का मंदिर है। कोणार्क भगवान भगवान सूर्य का मंदिर है। वो सूर्य के मंदिर के रथ के जो पहिए है, वो पहिए का वो बने हुए हैं पत्थर के, उसका चित्र 10 के नोट के ऊपर है। वो पहिए अभी भी कभी जाएंगे तो हमारे से लंबे पड़े, 10-12 फुट के लंबे लंबे पहिए, और ऐसे सूर्य के रथ के एक तरफ 16-16 पहिए है, ऐसे कुछ पहिए गिनती के पूरे गिनती करके उसका रथ बनाया हुआ है। और जो मंदिर है, सूर्य के उदय होने के वक्त पहली किरण उस मंदिर में सूर्य की मूर्ति जो स्थापित थी उसके ऊपर लगती थी, और मूर्ति के नीचे कोई सिंहासन नहीं था, मूर्ति बिल्कुल बीच में अधर खड़ी थी, कैसे खड़ी थी, एक बड़ा चुंबक ऊपर था, नीचे चुंबक एक था, एक दो साइड में चुंबक थे, वो चुंबक आपस में इतने शक्तिशाली थे, उस बड़ी विशाल भगवान सूर्य की मूर्ति को बीच में पकड़ के खड़े थे। अंग्रेज के शासन में जब उनकी जहाज पानी में जाते थे, ये समुद्र के किनारे पे है, कोणार्क समुद्र के किनारे पे, पानी के जहाज जाते थे, उनकी सारी मशीनें जाम हो जाती थी, मशीन कुछ दिखाती नहीं थी कहाँ जाना है, ये क्या बात है, या कोई भूत है कि पकड़ लिया किसी ने, लेकिन भूत ने पकड़ लिया, परछाई ने पकड़ लिया ऊपर से, ये कोई ऐसी परछाई पकड़ लेती थी, जहाज चलते नहीं थे। तो पता किया जाके कि अरे तो बड़ा अद्भुत बीच में मूर्ति खड़ी है, कैसे खड़ी है, बड़ी चुंबक है। तब वो मूर्ति को भी ले गए, चुंबक भी वहां से जो मैग्नेट थे वो निकाल के ले गए। अब मंदिर में मूर्ति नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। कभी कोई जाता है, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो कोणार्क मंदिर का दर्शन करने भी लोग जाते हैं, आपको सब चीजें उसके अंदर दिखाएंगे, अद्भुत कारीगरी का पुराना मंदिर बना हुआ है। तो मैग्नेट का मतलब इतना शक्तिशाली मैग्नेट होता है, लोहे का बना है लेकिन दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसको खींचता है, लोहे को खींचता है, खींचता किसको है, लोहे को खींचता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचता है। तो कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान क्या है, सच्चित आनंद विग्रह, भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, परिपूर्ण सत्य है, सब कुछ जानता है, आनंद का भंडार है। और हम जीव क्या है, सच्चित आनंद, हम भी उसी भगवान का अंश है, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं जितने भी जीव आप हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अंश हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे, मेरे से मेरे छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप सब मेरे हैं, अंश हैं, जैसे बाप बोलता है ये मारा अंश है बेटे को, ऐसे भगवान कहते हैं आप सब मेरे अंश हैं। तो उसी चीज के हम बने हैं जिससे भगवान बना हुआ है, चीज तो उसी के बने हुए हैं, लेकिन भगवान असीम है और हम सीमित हैं, वो विभू है हम अणु हैं। जैसे गंगा बहती है, आप जाते हैं कभी हरिद्वार गंगा में, तो वहां से एक एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और पानी भर के आते हैं घर में, और घर में आते हैं क्या है, गंगा जल है, तो गंगा जल, लेकिन गंगा तो नहीं है ना, गंगा तो बहती है, तुम्हारे घर में पानी रखा हुआ बोतल में बहता है, गंगा के अंदर लोग नहाते हैं अंदर, आप उसके अंदर नहा सकते हो, नहीं नहा सकते हो, अरे उस गंगा के अंदर तो मछलियां तरती है, ऊपर से लोग मिट्टी जो डालते हैं, आटे की गोली डालते हैं, यहाँ आप उसमें डालते हो, है तो गंगा जल, ये झूठ नहीं है, लेकिन गंगा नहीं है, गंगा बह रही है, गंगा में मछलियां तर रही हैं, गंगा में लोग नहा रहे हैं, लेकिन आपकी बोतल में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है गंगा जल। तो भगवान जैसे गंगा बह रही है, ऐसे उसके अंदर तो बहुत सारे भिन्नता है, लेकिन हम जीव उस बोतल वाले पानी की तरह हैं तो भगवान के अंश, लेकिन हैं बहुत छोटे सीमित, उसके अंदर बंद है, गंगा असीम है। तो छोटे हम टुकड़े हैं, लेकिन हैं भगवान के अंश, भगवान श्री कृष्ण का मतलब आकर्षण करने वाले, हम छोटे छोटे अंश, तो हमको तो छोटे लोहे के टुकड़े को, लोहे के चुंबक को जाके चपकना चाहिए ना, तो हम क्यों नहीं चपक रहे, कृष्ण आकर्षण करने वाला है, हम उसको चिपक जाए, क्यों नहीं चपक रहे, लोहे का टुकड़ा राजस्थान में पड़ा हो मिट्टी के अंदर, ऊपर से बरसात आ जाएगी तो लोहे के ऊपर जंग लग जाएगा, कट लग जाएगा, कट वाला लोहा चुंबक को नहीं चपकता है, जाके देख लेना, लोहे की सुई हो, लोहे का कील हो और उसके ऊपर कट लग जाए तो आप चुंबक के ऊपर रख दो तब भी नहीं चपकेगा, मालूम है, कट वाला नहीं चपकेगा लोहे को, चुंबक को नहीं चपकेगा कट वाला लोहा। तो भाग चुंबक की कोई गलती नहीं है, चुंबक में तो आकर्षण है, लेकिन लोहे ने अपने ऊपर कट चढ़ा दिया है। ऐसे हम जीवों ने कई कर्मों से अपने ऊपर कट चढ़ा दिया है, मैल चढ़ा हुआ है। अब ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात भी आ जाए तो भी कट इतना चढ़ा है कि उसके अंदर आकर्षण हमारा, आसक्ति उसके अंदर हमारी छिका कशिश नहीं होती है, वो हमको खींच नहीं रहा है, क्योंकि हमने ऊपर जंग लगा दिया है। इसलिए करना क्या पड़ेगा, हमको मिट्टी ऊपर से, कट ऊपर से उतारना पड़ेगा। जब हम कट उतारेंगे, मिट्टी उतारेंगे, सत्संग और कीर्तन ये दो साधन है, श्रवण कीर्तन सुनना और भगवान का कीर्तन करना, ये दो साधन है कट को उतारने, उस जंग को उतारने, उस मिट्टी आलूद लोहे के ऊपर से मिट्टी को उतारने। जैसे जैसे आप लोहे वाला दरवाजा वरवाजा घर में लाते हैं ना, पहले उसको क्या लाते हैं, एक रेगमाल लाते हैं, उसको घिसते हैं, घिसते हैं तो वो सब जंग उतर जाता है। तो ये घिसना है, ये भगवान का कीर्तन है ना, ये घिसाई करना है, भगवान का सत्संग घिसाई है। इस घिसाई से अनादि काल से जीव के ऊपर कर्मों का जो बंधन चढ़े हुए हैं वो कटते रहते हैं, कटते रहते हैं, कटते रहते हैं। लेकिन जब कट जाएंगे तब तो वो टुकड़ा अपने आप आकर्षण हो जाएगा, कृष्ण के संग में अपने आप भगवान को जाके चपक जाएगा। फिर चपकाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भाग जाएगा। और जो जंग उतार चुके हैं और जो चपके हुए हैं वो दूसरे को भी चपका लेते हैं। देखा मैग्नेट में एक लोहे का टुकड़ा चपका है ना, कीला है तो दूसरे के पकड़ेगा, दूसरा पिन होगा तीसरे को, ऐसे लंबी लाइन 100 की बन जाएगी। तो एक जो साफ होके चपक गया है ना ऊपर, वो दूसरे को पकड़ लेगा। तो साधु संत महात्मा वो अपना जंग उतार लेते हैं, और तो क्या है, वो भगवान से चपके हुए होते हैं। फिर दूसरे जो आते हैं उनको चपक जाते हैं, तो उनको चपकते हैं तो वो उसको भगवान के साथ चपका देता है। शक्ति किसकी है? भगवान की है, उसमें अपनी शक्ति नहीं है। उसको उतार के नीचे रख दो ना, भगवान से अलग करके मैग्नेट से दूर रखो, तो फिर वो किसी को चपकेगा नहीं। जब तक भगवान से जुड़ा हुआ है साधु महात्मा तब तक तो दूसरों का भी उद्धार कर सकता है, लेकिन भगवान से कट के अलग रह के बोला मैं आपका उद्धार कर सकता हूं तो संभव नहीं। भगवान से जुड़ा हुआ होगा तभी उद्धार कर सकता है, भगवान से कट के उद्धार नहीं कर सकता। तो कृष्ण का मतलब सबको आकर्षण करने वाला, और राम, राम शब्द का अर्थ है रम्यति इति राम, जो आनंद प्रदान करे, आनंद का जो भंडार हो, जिसमें आनंद के फुहारे निकलते हैं, उसको राम भगवान का अर्थ है आनंद देने वाला। तो हे आनंदमय भगवान, हे सर्व आकर्षक भगवान की अंतरंग शक्ति, हमें अपनी सेवा में लगाओ। इस मंत्र का अर्थ है एप्लीकेशन देना नौकरी के लिए। बेरोजगार जैसे जिनके पास कोई काम नहीं है वो अर्जी देते हैं ना, प्रार्थना पत्र देते हैं, ये कीर्तन का मतलब प्रार्थना पत्र है। माँ भगवान की अंतरंग शक्ति, अपनी माता को प्रार्थना करनी है हमें भगवान की सेवा में लगाओ, तो ये कीर्तन का अर्थ ये है। और प्रभुपाद जी महाराज इसकी भावार्थ में एक जगह कहते हैं द जेन्युइन क्राय ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर। जब कीर्तन करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए जैसे छोटा सा बालक अपनी माँ के लिए रोता है। बाल बच्चा भूखा होता है, रोता है तो उसकी माँ सब काम छोड़ के बच्चे को उठा लेती है, उठा के उसको दूध पिलाती है। क्यों माता जी, ऐसे है कि नहीं? बच्चा छोटा सा रोता है तो माँ सब काम छोड़ के, अपनी नींद रात की अपनी नींद को भी छोड़ के उठ के बैठ जाएगी, उसको दूध पिलाएगी। तो ऐसे जब कोई भक्त भगवान का कीर्तन इस भाव से करता है, छोटे बच्चे की तरह बिलख के भगवान को पुकारता है, तो भगवान की अंतरंग शक्ति भगवान को कहती है देखो तुम्हारा भक्त कितना बड़ा महान है, कितना प्रेम से आपका कीर्तन कर रहा है, इसको आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान के शरण में जाने का साधन शास्त्रों ने बताया है। हरे कृष्णा। टाइम हो गया 10 मेरे को लगता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो कैसे भगवान का नाम जपना चाहिए? छोटे बच्चे की तरह। और छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ उसको उठा लेती है, सब काम अपना छोड़ के उसको उठा लेती है। एक महात्मा उदाहरण दे रहा था, एक माता जी अपने रसोई घर में रसोई बना रही थी, चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा हुआ था, दूसरे चूल्हे के ऊपर दाल चढ़ी हुई थी, हाथ से आटे को मल रही थी, बच्चा कमरे में सोया हुआ था, सोया हुआ बच्चा रोया, माँ चूल्हे के ऊपर चढ़े हुए दूध को और दाल को सब्जी को छोड़ के आटे वाले हाथ के साथ भागती हुई गई, बच्चे को गोद में ले लिया, रोते हुए बच्चे को गोद में ले लिया, उसको दूध पिलाया, उसको खिलौने दिया, उसको खाने की चीज दी, उसको छोड़ के अपने काम में लगी आकर, मिठाई का लड्डू दिया खाने को बच्चे को, बच्चा चुप हो गया। 10-15 दिन के बाद माता जी को कोई काम नहीं था, रसोई में नहीं थी, बाहर बैठी थी, आंगन में बाहर बैठी थी, और बैठ के कर क्या रही थी, और मूंगफली छील के खा रही थी, कोई काम नहीं था। बच्चा अंदर रोने लगा, माँ 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 नहीं जा रही, माँ मूंगफली खा रही, माँ माँ नहीं गई। बच्चा रो रो के गला सूख गया, भाग के आया, माँ को पकड़ा, बोला माँ माँ उस दिन मैं एक बार रोया, आप तो आटे वाले हाथ से रसोई घर से निकल के आई, मुझे गले से लगा लिया, और आज मैं कब से रो रहा हूँ, आप मेरी बात भी नहीं सुन रही है, रोना नहीं सुनाई दे रहा। माँ ने कहा मुस्कुरा के, बेटा उस दिन तुम रोया था मेरे लिए, आज तू लड्डू के लिए रो रहा है, तेरे को लड्डू चाहिए इसलिए तू रो रहा है। तो माँ को पता लगता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, असली रोना बच्चे का और खर्ची लेने वाले रोने में अंतर है कि नहीं है, आपको पता लगता है कि नहीं लगता है, बच्चे रोते हैं जब कष्ट होता है तब रोता है, और जब खर्ची हो लेनी होती है लड्डू खाना होता है तब जो रोता है, उस दोनों में अंतर है ना। तो भगवान का कीर्तन तो सब करते हैं, लेकिन भगवान को मालूम है कि ये लड्डू खाने के लिए कीर्तन कर रहा है कि मेरे लिए कीर्तन कर रहा है। भगवान के लिए कीर्तन तो सब करते हैं, गाते सब हैं, लेकिन उसको मालूम है, जैसे माँ को मालूम है कि ये जो इस वक्त गा रहा है ये मेरे लिए गा रहा है या मेरे से कुछ लेने के लिए गा रहा है। तो आपके फोन है ना, सब मोबाइल फोन है ना, कॉल आती है, जिसको नहीं जानते हैं उसको देख के रख देते हैं, उससे जब बात नहीं करते हैं, वो मिस कॉल में पड़ी होती है और उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन कोई चीज़ ऐसा नाम आ गया अंदर से अपना, किसी बहुत सज्जन का, सब काम छोड़ के उसको फोन पे बात कर लेंगे। तो ठीक इस तरीके से कई लोग भगवान को रोज अरदास करते हैं, भगवान के मिस कॉल में जाता है, देखता है तो पता नहीं कोने में, जानता ही नहीं, कभी राम राम किया नहीं, आज कहाँ से इसका ये फोन आ गया, डिलीट कर दो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भक्त है उसका फोन आ गया, अरे ये तो रोज कीर्तन करने वाला है, तो रोज सुबह सवेरे 4 बजे उठ के मेरे को याद करता है, इसने फोन कर दिया, जल्दी करो इसे पता करो इसको क्या जरूरत है। तो दुनिया में आप ऐसे करते हो, कई मिस कॉल डिलीट होती हैं, लेकिन कोई मिस कॉल होती है उसको उसी वक्त उत्तर देना पड़ता है, देर नहीं करते, फोन में भी ऐसे करना पड़ता है। तो माँ भी इस तरीके से लोगों से व्यवहार करती है। तो भगवान किस लिए आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं ये भगवान जानते हैं, इसलिए प्रेम से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तो भगवान एकदम आके प्रेम से हमारे को गले लगा लेंगे। कौन? भगवान की अंतरंग शक्ति माता की तरह उठा के अपनी गोद में बिठाएगी, भगवान के चरणों का अमृत पिलाएगी। हरे कृष्णा। तो दूसरा क्या प्रश्न है आपका दाऊलाल जी? आज एक और प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, 10 मिनट प्रश्न को बढ़ाते हैं और फिर कीर्तन करेंगे। तो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहितम, तो ये विज्ञान की बात चल रही है, जानकारी के बाद अनुभव करना आपको पड़ेगा। क्या की
पद्धति क्या है?
पद्धति तो क्या तरीके से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होने की पद्धति क्या है? कृष्ण भावना होना, कृष्ण भावना का मतलब है जैसे कृष्ण भावना, अमृत संघ संस्था का नाम है कृष्ण भावना, अंग्रेजी में बोला कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना का मतलब जिसकी भावना कृष्ण में लगी हो, जैसे भावना भाव, भगवान भाव चाहता है तो हमारे भाव में कृष्ण बसे हुए हों, इसको कृष्ण भावना कहते हैं। उसकी पद्धति ये है, कृष्ण भगवान की भावना में भावित होने के लिए हमारे पास एक इंद्रिय है, उसका उपयोग करना पड़ता है। वैसे सब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, लेकिन एक ही पहले इंद्रिय से शुरू करेंगे तो बाकी इंद्रियां अपने आप भगवान की सेवा में लगेंगे। कृष्ण भावना भावित करने के लिए हम सबको जीभा को, पहले पहले जबान को, जीभा को सेवा में लेना है। आदव जीभा, जीभा के द्वारा कृष्ण भावना की पद्धति की का आरंभ होता है। जीभा का क्या काम है? सुनना। जीभा का क्या काम है? बोलना और सुन और चखना। कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना, त्वचा का काम है स्पर्श करना, नाक का काम है सूंघना, लेकिन जीभा के दो काम है, बोलना और चखना। अब सबको बोलना आता है कि नहीं आता है, सबको चखना आता है कि नहीं आता है? ये दो काम अगर हम शुरू कर दें तो कृष्ण भावना भावित होना शुरू हो जाएंगे। मुख से बोलना है भगवान के नाम का कीर्तन, और चखने के लिए खाना है भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद खाने से जीव को और भगवान का नाम लेने से जीव को कृष्ण भावना होती है। कृष्ण भावना की पद्धति ये है। पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए महाराज ने एक दिन जहाज में जाते हुए बोला, पूरे विश्व के अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों को कृष्ण भावना भावित किया गया, हमने सिर्फ दो काम किए। महाराज ने कहा, बोला महाराज क्या दो काम के द्वारा सबको कृष्ण भावना भावित किया? बोला एक तो प्रेम से दो करताल लेकर और भगवान का कीर्तन किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे उद्यान के अंदर बैठ के, कोई बड़ा मंदिर बना के भी नहीं, गली में कोचे में बाजार में कहीं भी कीर्तन किया मैंने प्रेम से, और जो कीर्तन सुनने आए उनको मैंने प्रसाद बनाया, भोजन बनाया, भगवान को अर्पण किया और प्रसाद सबको खिलाया। कीर्तन और प्रसाद के द्वारा विश्व के अंदर लाखों की संख्या में कृष्ण भावना भावित भक्त बने। हमने कई विदेशी भक्तों से साक्षात करके पूछा कि आप लोग भक्त कैसे बने? बोला प्रसाद खाकर। इतना अच्छा लगता था हलवा पूरी गुलाब जामुन कि हम एक दिन खाने जाते थे, मन करता दोपहर दूसरे जन जाए, पांच दिन खाने जाते थे फिर उधर ही रह जाते थे और भक्त बन गए और भगवान का नाम लेना शुरू। तो भगवान का कीर्तन आप अपने घर में माता जी लोग ये सब कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर सुख हो, शांति हो, बच्चे कहना मानते हो, परिवार में संगठन हो, तो एक बहुत आसान काम शुरू कर दो। बहुत सुंदर भोजन बनाओ, रसोई में ठाकुर जी भगवान श्री राधा कृष्ण को बिठा दो और भोजन एक थाली के अंदर सारा जो बना लेते हो भगवान के आगे रख दो और हाथ जोड़ के बैठो कि भगवान ये सब जो बनाया है ये आपके लिए, आप इस भोग को आरोगिए। पाँच दस मिनट भगवान के सामने रख के बैठ के भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, 10 बार जप करो हाथ जोड़ के, वो प्रसाद उठा के वो प्रसाद हो गया, और सारे प्रसाद में मिला दो और सबको खिलाओ, और तो सबकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, सबका मन बिगड़ने से बच जाएगा, सबके अंदर संतोष आ जाएगा, सब शिष्टाचार में जिएंगे। और जब भोजन सबको परोसो, पुराने जमाने में भोजन परोसते ऐसे, माता जी भोजन लेके बैठती थी, बच्चे सब सनी सामने बैठते थे, सबको परोस के खिलाती थी प्रेम से। अब तो कोई ऐसा खाता नहीं है, एक थाली में उठा के टीवी के सामने बैठेगा, दूसरा बीवी के सामने बैठेगा, कोई कोई साथ खाने वाले है नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो साथ खाते थे तो सब प्रेम चलता था, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर उन सबको बिठाओ, प्रसाद भोजन देने के बाद प्रसाद आ गया, भोजन नहीं अब प्रसाद हो गया, ये प्रसाद का भवन भगवान की कृपा। सब बोलो, सब एक 10 मिनट चलो भगवान का नाम लेते हैं, तब बैठ के कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 5 मिनट कीर्तन करो और फिर प्रसाद खाओ। ये दो काम घर में शुरू कर दो कि जो भोग बनाओगे शुद्ध सात्विक वो भगवान को भोग लगाओ 10 मिनट और फिर प्रसाद सारे परिवार को खिलाओ, और परिवार के बैठ के थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करो। किसी ने हमको कहा हमको शर्म आती है, बहू सास बेटा सब बैठ के कीर्तन कैसे करें? वो हमारे साथ एक दूसरा भक्त था, बोला इनसे पूछो कि टीवी के ऊपर बैठ के सब परिवार के देखते हैं और न देखने चीज़ें देखते हैं, न देखने जैसी चीज़ें देखते तब शर्म नहीं आती? जो देखना नहीं चाहिए ऐसी टीवी पे ऊपर आती है और सारा परिवार बैठ के ऐसे देखता है तब नहीं शर्म आती है? भगवान का नाम लेने में ही शर्म आती है क्या? नहीं शर्म आनी चाहिए भगवान का नाम लेने में, साथ बैठ के नाम लेने में कौन सी शर्म आती? तो भगवान का नाम नित्य घर में लेने का नियम बना लो और भगवान को रोज भोग लगा के प्रसाद खाओ, तो ये कृष्ण भावना भावित होने का बहुत सरल तरीका, और सभी इसको अपना सकते हैं। किसी को भी इसमें हम कहेंगे बहुत बड़ा मंदिर बना के और भगवान की पूजा करो और रोज कस्तूरी चंदन का तिलक करो, कहाँ से सब कस्तूरी चंदन लाएंगे? लेकिन दाल रोटी जो बनाते हो, खिच रबड़ी जो बनाते हो ना, वही भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को कोई भूखा नहीं है, जो है वही लगाओ, लेकिन शुद्ध भाव से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और खाओ, और भगवान का नाम ले लो, ये सब ले सकते हैं ना। तो भगवान कृष्ण भावना भावित होना बहुत बहुत सरल है, बहुत आसान है, सब हो सकते हैं। और सबको होने के लिए प्रेरणा हम देते हैं और सबको होने का अधिकार भी है। वैसे भगवान की भक्ति की शुरुआत होती है सुनने से, आदव श्रवण, पहला श्रवण है भक्ति का अंग। तो भगवान की कथा में आप सब आए हैं, सुन रहे हैं, ये कृष्ण भावना शुरू हो चुकी है आपकी, कृष्ण भावना शुरू हो चुकी भगवान कृष्ण की कथा सुनने से। और कीर्तन कर रहे हैं, ये आपकी कृष्ण भावना शुरू हो चुकी। प्रसाद आपको दे रहे हैं, ये कृष्ण भावना आपकी शुरू हो चुकी। और ये प्रसाद हमारे, कभी हमारे मंदिर में आएंगे सत्संग में, हम आपको हलवा पूरी का प्रसाद देंगे, बहुत खिचड़ी बना के प्रसाद खिलाएंगे, बिठा के बड़ा, तो वो प्रसाद खाएंगे तो आपके मन में कृष्ण भावना अपने आप जागृत हो जाएगी। तो भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का प्रसाद खाना कृष्ण भावना भावित होने की यही पद्धति है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम